सुर्खियों में
नमस्कार श्रोताओं, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कमल कुमार प्रजापति। आज कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं पूर्वोत्तर भारत के विकास की तेज गति पर। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार सुविमल भट्टाचार्य जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
नमस्कार
सुविमल जी, बीते 11 वर्षों में पूर्वोत्तर भारत के विकास की अगर हम चर्चा करें तो इसका एक महत्वपूर्ण पहलू तो यह है कि सरकार ने पूर्वोत्तर भारत को एक रणनीतिक महत्व के तौर पर देखा है। दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं उनके साथ जो रणनीतिक संबंध हैं उनको मजबूत करने और भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उस लिहाज से भी पूर्वोत्तर भारत के विकास को जरूरी समझा गया। तो कैसे इस दिशा में आप पूर्वोत्तर भारत के विकास को देखते हैं?
पिछले 12 साल में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए दिल्ली में, तब से उत्तर पूर्व भारत को मैं किस तरीका से विकास की तेजी करे उसमें प्रयास रहा। और अगर आप देखें तो कनेक्टिविटी सबसे बड़ा आपके सामने दर्शाता है कि किस तरीका से कनेक्टिविटी के माध्यम से पूरे नॉर्थ ईस्ट को जोड़ा गया है। अगर आप देखें तो टेलीकॉम कनेक्टिविटी जिसके माध्यम से आज इंटरनेट की जो अवेलेबिलिटी है सारा उत्तर पूर्व में उसमें काफी सुधार आए हैं। और इसके साथ साथ रोड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवे और इवन इनलैंड वाटरवेज में भी काफी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन हुए। अगर अब सिर्फ एयरपोर्ट से ले तो जब 2014 में करीब 9 एयरपोर्ट्स फंक्शनल थे, आज 17 से ज्यादा एयरपोर्ट्स फंक्शनल है। इलेक्ट्रिसिटी 100% कनेक्टिविटी हो गए। 4G कवरेज 41,000 गांवों में गए। ये जो प्रयास रहे हैं और जिस तरीका से लोगों को जोड़ा गया और जिस तरीका से लोग अपने आप बहुत सारे एक्टिविटीज इंटरनेट के माध्यम से भी कर पा रहे और सड़क की क्वालिटी की इम्प्रूवमेंट और सड़क की नेटवर्क की इम्प्रूवमेंट के माध्यम से उनके जो यातायात जो बढ़ा है, मुझे लगता है उसने काफी कुछ देखा गया। साथ में अगर पकड़े तो बहुत सारे बड़े बड़े ब्रिजेस भी बनाए गए हैं, जैसे कि धोला सदिया ब्रिज और अब गुवाहाटी में एक अंडर वाटर रेल रोड टनल की भी बात हो रही है। तो प्रयास ये रहा कि हमेशा एक उत्तर पूर्व में एक होप होता था कि हम पूरे देश के साथ साथ हम इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी में हम पीछे पड़े हैं, लेकिन इस 12 साल में जिस गति में ये काम हुआ है उससे बहुत कुछ फर्क पड़ा है। अगर आप रेल को भी देखें तो 2016 में जब से लमडिंग सिलचर बदरपुर की जो ब्रॉडगेज कनेक्टिविटी की जो प्रयास रहे, इसके बाद मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा ये तीनों राज्यों भी रेल नेटवर्क में देश के साथ जोड़ गया। आज के दिन दिल्ली, कलकत्ता और दक्षिण भारत के बहुत जगह से ट्रेनें चल रही उन राज्यों में, तो ट्रेन की जो सुविधा लोगों के बीच में चलने फिरने का और विशेषकर लोअर मिडिल क्लास के लिए जो सुविधा आए है, फ्लाइट की जिस मात्रा में फ्लाइट भरे है, अभी अभी दिसंबर महीने में प्रधानमंत्री जी ने गुवाहाटी का नया टर्मिनल का उद्घाटन किया था, तो इससे जो उत्तर पूर्व का जो टूरिज्म पोटेंशियल भी रहता है उसको भी बहुत फायदा आज के डेट में हो रहा है।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम और पूर्वोत्तर भारत के विकास के संबंध में संचालित हो रही विकास परियोजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने अपने संबोधन में ढांचागत विकास परियोजनाओं के साथ साथ कई कल्याणकारी परियोजनाओं के बारे में कहा।
5,00,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने का संकल्प भी बहुत ही प्रशंसनीय है। इससे असम में सुविधाएं भी बढ़ेगी और कंस्ट्रक्शन से जुड़े हर सेक्टर में रोजगार के भी अनेक अवसर बनेंगे। बीते वर्षों में असम के 22,00,000 से अधिक गरीब परिवारों को पक्के घर मिले हैं। मिशन वसुंधरा के तहत 23,00,000 से अधिक असम के मूल निवासी भूमि के मालिक बने हैं। ये जनजातीय समाज के लिए, ऐसी कम्युनिटी के परिवारों के लिए बहुत बड़ा सुरक्षा कवच बन रहा है। अभी तक असम की करीब 3,00,000 बहने लखपति बाइदो बन चुकी है। कल असम बीजेपी ने ऐलान किया है कि अब डबल इंजन सरकार 40,00,000 बहनों को लखपति बायदो बनाने के लिए प्रयास करेगी।
हम एक और महत्वपूर्ण पहलू की तरफ अगर नजर डालें तो सरकार ने पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए एक विशिष्ट मंत्रालय की भी स्थापना की, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, जिसकी देखरेख में पूर्वोत्तर भारत से जुड़ी हुई जो विकास कार्य हैं या गतिविधियां हैं उनको संचालित किया जाता है। तो एक मंत्रालय का स्थापित होना और जो पूंजीगत व्यय है या बजट है उसके आवंटन में भी बढ़ोतरी होना, ये कितना जरूरी था पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिहाज से?
काफी बड़ा कदम था। और आपने जैसे बताया कि उत्तर पूर्व भारत के लिए एक अलग मंत्रालय है जिसको हम डोनर कहते हैं, तो ये डोनर मंत्रालय प्रधानमंत्री वाजपेयी के समय से इसको शुरू किया गया था और इसके बाद से हर सरकार उत्तर पूर्व के लिए इस मिनिस्ट्री की कामकाज के लिए इनकी निगरानी में होने के लिए हर मिनिस्ट्री की तरफ से 10% इनके अपने एक्सपेंडिचर नॉर्थ ईस्ट के लिए रखे गए। तो पिछले 10-12 साल में अगर हम देखें तो जिस तरीका से ये 10% की इम्प्लीमेंटेशन में बढ़ोतरी हुए और इसके साथ साथ तो कई सारे सेंट्रल स्कीम्स जो उत्तर पूर्व राज्य में चलते हैं उसमें इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली हुए, अकाउंटेबिलिटी रहे पैसा की और प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग रियल टाइम बेसिस में रही, ये एक बड़ा महत्व था और ये मिनिस्ट्री ने बड़ा अच्छा काम निभाया। इसकी जो एजेंसी है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल NEC, इसने भी अपना जो स्कीम्स रहे हैं जैसे कि सड़क कंस्ट्रक्शन और जो स्ट्रेटेजिक एरिया जहां बहुत जगह इनकी तरफ से रोड्स बनाए जाते हैं या और सारे जैसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरीके से या इंडस्ट्री 4.0 को किस तरीके से उत्तर पूर्व में लिया जाए, तो ये जो एफोर्ट रहे हैं ये मिनिस्ट्री के माध्यम से और साथ साथ उत्तर पूर्व के लिए कई सारे स्कीम्स चलते हैं कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर के जो एफोर्ट है उसके और बूस्टअप रहे।
सुविमल जी, आपने सड़क कनेक्टिविटी का जिक्र किया तो हमारे पास बहुत ऐसे पॉजिटिव आंकड़े हैं जिसमें ये शामिल है कि अगर हम राष्ट्रीय राजमार्गों की बात करें, जैसा कि आपने भी बताया, जो 10,000 से बढ़कर लगभग 16,000 किलोमीटर तक पहुंच चुका है, और दूसरी ओर ये भी देखा गया है कि जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसके तहत पूर्वोत्तर भारत में दूर दराज के गांवों को जोड़ने की कोशिश भी की गई है और लगभग 47,000 किलोमीटर का एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया गया है। तो कितना जरूरी है पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिहाज से कि सड़कों का एक व्यापक जाल हो जिससे कि आवाजाही सही तरह से सुनिश्चित हो, तो ऐसे में जो काम हुआ है उस पर आप क्या कहेंगे?
सबसे बड़ी बात है कि कनेक्टिविटी पॉइंट टू पॉइंट बहुत सारे जगहों के बीच में कई सारे स्कीम्स के माध्यम से आए, लेकिन क्वालिटी ऑफ द रोड कनेक्टिविटी में मैं समझता हूँ कि काफी बड़ा सुधार आया है। पहले बहुत सारे रोड्स होते थे जिससे आप जा नहीं सकता है 10 किलोमीटर भी ठीक से, अब 100-100 किलोमीटर जा सकता है। इतने अच्छे रोड है, बिल्कुल कारपेट की जैसे है। और आपने कुछ दिन पहले देखा कि प्रधानमंत्री जी खुद मोरन के पास प्लेन की लैंडिंग भी हुए है। दूसरी बात है कि बहुत सारे गांव अंचल जो उत्तर पूर्व के पहाड़ी राज्यों में है और बहुत सारे रोड्स जिसमें आपकी ब्रिजेस की कनेक्टिविटी बड़े कम होते, तो ये जो ब्रिज कंस्ट्रक्शन भी पिछले कुछ सालों में हुए और ब्रिजेस जो है पहले काट के होते थे, आज के डेट में वो कंक्रीट के होते हैं, तो ये सारे ब्रिजेस जो छोटे छोटे रोड नेटवर्क्स में कनेक्टिविटी बढ़ाए है, मुझे लगता है कि एक पैरेलल आर्टेरियल नेटवर्क में बहुत जगह में बन चुके हैं। तो नेशनल हाईवे जिस मात्रा में बढ़ रहा है, आपने जिक्र किया था करीब 15,000 किलोमीटर की कंस्ट्रक्शन है, और स्टेट हाईवे भी जो बने हैं करीब 22,000 किलोमीटर की स्टेट हाईवे बने, और मुझे लगता है कि इससे बहुत सारे कनेक्टिविटी में बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि उत्तर पूर्व के बहुत इलाका है जहां रेल कभी पहुंच नहीं सकते या पहुंचे भी तो उस तरीके से इकोनॉमिकली भी वायबिलिटी नहीं होता है। तो ये रोड नेटवर्क इससे लेके आपकी एयरपोर्ट के पास लाए, आज के डेट में जो इनलैंड वाटरवेज की भी जो प्रयास रहे कि नेशनल वाटरवेज को किस तरीके से ब्रह्मपुत्र के माध्यम से टूरिज्म पर्पसेज और गुड्स कैरिंग पर्पसेज भी ब्रह्मपुत्र से और आगे बांग्लादेश की रोड को भी पानी को इस्तेमाल करके हम वो आपकी ट्रांसशिपमेंट भी करें, तो इससे जो पॉइंट है उसमें रोड कनेक्टिविटी भी काफी इम्प्रूव है। तो मुझे लगता है कि ट्रेड और वाणिज्य जो है उस अंचल में उसमें बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स जो है गांव अंचल के है इनको आज मौका मिल रहा है नियरेस्ट मार्केट तक पहुंचाए और इंटरनेट के माध्यम से ये और बाहर के मार्केट एक्सप्लोर करें, तो इसमें सड़क का बहुत बड़ा भूमिका है।
इसी तरह से रेल लाइनों की भी अगर हम चर्चा करें तो बहुत सी नई रेल लाइनों की प्रस्तावित योजनाएं और जो शुरू हो चुके हैं उनके विकास को भी हमने देखा है, तो क्या कुछ प्रमुख रेल लाइन का आप यहाँ पर जिक्र करना चाहेंगे जिससे पूर्वोत्तर भारत के हम एक नए रेल नेटवर्क को देख रहे हैं?
जब से गॉज कन्वर्शन की प्रोजेक्ट्स के ऊपर ध्यान दिया गया और एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी रीजन था 180 किलोमीटर की लंबडिंग सिलचर से, तो उस कनेक्टिविटी को आपकी कम्प्लीशन के बाद आपको ये भी जानना चाहिए कि ये 20 साल से नहीं हो रहे थे, इसमें किसी न किसी रुकावट आ रहे थे। जब से प्रधानमंत्री आया तब से उन्होंने एडिशनल फंडिंग दे के इस नेटवर्क को कम्प्लीट करवाया और इसके बाद त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर ये तीनों राज्य भारतीय रेल नेटवर्क में जुड़ गए और बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस भी जो इस साइड में है वो कनेक्टिविटी में जुड़ गए। साथ साथ में अब स्पेशलाइज टूरिस्ट ट्रेन जैसे विस्ताडोम कोचेस लगाया गया, उससे फर्क पड़ा है। और जो आज के डेट में जो प्रयास है कि बहुत सारे क्षेत्र में आपकी इलेक्ट्रिफिकेशन के काम भी हो रहा है रेलवे की, तो इससे जो है लोगों का यातायात, टूरिस्ट का भी और उस अंचल के लोग भी जो बहुत कारण के लिए मेनलैंड अगर हम शब्द यूज करें तो आते हैं कभी ट्रीटमेंट के लिए, बहुत सारे टूरिस्ट आज साउथ इंडिया से भी ट्रेन के माध्यम से उत्तर पूर्व के अलग अलग इलाका में जा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के बारे में उतने जानते नहीं है और इनकी जो विविधता है अगर आप देखें टूरिज्म का पर्सपेक्टिव से, तो जिस तरीका से सीनिक ब्यूटी है उस तरीका से आपकी नेचुरल ब्यूटी है, इसके साथ साथ आपकी फ्लोरा फौना है, साथ में आपकी रिलीजियस टूरिज्म की प्रोस्पेक्ट है, तो इसको आप धीरे 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 डिस्कवर होते और साथ साथ में कैस्केडिंग जो इम्पैक्ट होता है जैसे कि लोगों का अतिथि को रहने के लिए जो अरेंजमेंट कर रहे हैं तो उससे एक लोकल इकोनॉमी को बहुत जगह में फायदा मिल रहा है।
सरकार ने पूर्वोत्तर भारत को अष्ट लक्ष्मी की संज्ञा दी है और ये प्रयास रहा है कि पूर्वोत्तर भारत में आर्थिक अवसर को और बढ़ोतरी मिले और साथ ही निवेश इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ोतरी मिले, तो इस दिशा में भी आप कुछ प्रगति होती हुई देख रहे हैं कि निवेश और आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देने के जो प्रयास हैं वो किस तरह से हुए हैं?
इसमें बहुत सुधार आए हैं और अगर हम जो सबसे सामने हमारे सामने दर्शाता है ये है कि आज जो एक उत्तर पूर्व भारत के एक परसेप्शन कई सालों से चले कि ये बड़ा डिस्टर्ब है और इसमें काम नहीं होते हैं और बिजनेस वाणिज्य के लिए ठीक नहीं है, ये बदलते जा रहा है और जिस तरीका से निवेश अभी आ रहा है जैसे कि आसाम में इन्वेस्टमेंट समिट जो कि उसमें देखा गया है कि करीब 5 लाख करोड़ के ऊपर भी लोगों ने वादा किया इन्वेस्ट करने का और इसके बाद जो फॉलो थ्रू भी रहे हैं। इसके साथ साथ जब आसाम में होते तो साथ में जो और उत्तर पूर्व राज्य उनमें भी लोगों में बिजनेस इंटरेस्ट होता है, तो एंसिलरी इंटरेस्ट इंडस्ट्रीज भी साथ साथ में होते हैं। और जो आज प्रयास हो रहा है कि किस तरीके से एक कॉमन इकोनॉमी नॉर्थ ईस्ट से जुड़े और वो किस तरीके से वो भी डायरेक्ट एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अप्रोच भी रहे और अपने डोमेस्टिक मार्केट जो सारे देश भर में उत्तर पूर्व के प्रोडक्ट्स की बहुत कुछ की डिमांड होते हैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट उसको कैसा पहुंचा जाए कि इम्प्रूव्ड कनेक्टिविटी के माध्यम से। अगर आप देखें तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो 2015 से लागू किया गया है तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के माध्यम से जो साउथ ईस्ट एशिया के साथ कनेक्टिविटी जिसके माध्यम से वाणिज्य जिसके माध्यम से टूरिज्म को बढ़ाया जा सकता है उसके लिए भी काफी इंफ्रास्ट्रक्चर और एक मैं कहूंगा एक वार्म अप एक्सरसाइज हो चुका है और धीरे धीरे जैसे बांग्लादेश का हालत भी सुधरते जा रहे हैं और म्यांमार में भी मुझे लगता है बड़े जल्दी इम्प्रूवमेंट होगा, तो हमारा जो लॉन्ग टर्म गोल थे एक्ट ईस्ट पॉलिसी की आगे साउथ ईस्ट एशिया के साथ कनेक्टिविटी उसमें भी हमें बहुत सुधार देखे हैं। तो एक की है नीति और पॉलिसी और उत्तर पूर्व को क्लोज अटेंशन देने का, इन्वेस्टमेंट देने का, फंडिंग देने का और फंडिंग को मॉनिटर करना, ये जो एक होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच रहे है इससे लोगों का बीच में कॉन्फिडेंस बढ़ा। साथ साथ अगर आप देखें तो गृह मंत्रालय की तरफ से बहुत सारे जो उग्रवादी मूवमेंट्स वहां होते हैं एक एक करके करीब 12 ऐसा मूवमेंट्स को अमित शाह जी ने प्रयास करके निगोशिएटिंग टेबल में लाके उसमें एग्रीमेंट करके वो सारे चीज बंद कराए और ये जो रिहैबिलिटेशन इनकी वो है जो इनको कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए सपोर्ट दिया जाता है, तो पहले ऐसा बहुत सारे सरेंडर सेरेमनी हो जाते इसके बाद आगे नहीं होते थे, अब इसमें भी धन एलोकेशन के बाद किस तरीके से इनके पास पहुंचे मॉनिटर करके और इससे भी बहुत फर्क पड़ा है कि बहुत सारे लोग जो आपके गलत रास्ता में चले गए थे आज वो आके खुद एंटरप्रेनर बन रहे हैं।
विकास, समृद्धि और शांति, इन तीनों मामलों में देखा जाए तो उत्तर पूर्व क्षेत्र एक नई तरह से आगे बढ़ता हुआ अब दिख रहा है और विकास की इस तेज गति से निश्चित रूप से जिस तरह से पूर्वोत्तर भारत को लाभ पहुंच रहा है इसके साथ साथ इसका लाभ हम पूरे भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जा रहा है। सुमिमल जी बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
तो श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
सुर्खियों में,